तो आइए इन सारी बातों पे लेकर अब पारे की आयत के साथ चलते हैं, सूरत ज़ुमर की आयत 32 से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़मन अस्लम मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़ब बिस्सिद्क़ इज़ जाअहू अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन। इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोले और सच्चा दीन जब इसके पास आए तो इसे झूठा बतलाए। कैसे कुफार के लिए जहन्नम ठिकाना नहीं, यानी खुद साख्ता बातें अल्लाह ताला की तरफ लगा देना। यानी पहली आयत से पता चलता है कि तुम्हारे ख्याल में मोहम्मद ने झूठी नबूवत का दावा किया है, तो जान लो कि उसने नहीं, तुम उसको झुटला कर दुनिया के सबसे बड़े झूठे बन रहे हो। इसके बरक्स अभी आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ इशारा करती है और हर उस शख्स के लिए जो सिद्दीकियत के मुकाम पे फायज़ है और होना चाहता है। अल्लाह ताला हम सब को भी अपना गोल सिद्दीकियत के मुकाम वाला सेट करने की तौफीक दे। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ी वसद्दक़ बिही, और जो सच्चे दीन को लाए ये नबी सल्लम, और जिसने उसकी तस्दीक की ये अबू बकर सिद्दीक़, और बाद में क़्यामत तक आने वाले सारे ही सिद्दीकियत के दर्जे के लोग। फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही लोग पारसा हैं। लहुमा ये शाऊन इंदा रब्बिहिम, इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज़ है जो ये चाहेंगे, और ये कोई नई बात नहीं। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, नेक लोगों का बदला यही है। लियुकफ़्फिरल्लाहु अन्हुम, ताकि अल्लाह ताला इनसे इनके बुरे अमलों को दूर कर दे, और जो नेक काम उन्होंने किए हैं इनका अच्छा बदला अता फरमाए। अल्लाह की सुन्नत नोट कीजिए, बियाअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। बस आप हर काम को आसान दर्जे पे करें। आज इस पारे के दौरान हर दूसरी आयत पे दुआ करें, अल्लाह मुझे सिद्दीक बना दे, अल्लाह मुझे सिद्दीका बना दे। वो आयशा सिद्दीका थी, वो अबू बकर सिद्दीक थे, वो खदीजा सिद्दीका थी। अल्लाह आपको मुझे अपने अपने कामों में सिद्दीक बना दे, इबादत के से लेके मामलात में और हर काम में दी बेस्ट दर्जे पर उस काम को करने वाला बना दे। और रह गई दुनिया तो फरमाया अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, इसको सोचिए और रोइए, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? ये लोग आपको अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, और जिसे वो हिदायत दे इसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह ताला गालिब और बदला लेने वाला नहीं? क्या प्यारा अंदाज है। देखिए जब बंदा सिद्दीकियत के दर्जे पे पहुँचने के कोई काम करता है ना, तो रास्ते में एक ही रुकावट आती है, लोग लोग हाय ये चला जाएगा। जैसे अभी हमने सुना मोहम्मद अरबी में तिजारत ख़त्म हो जाएगी, लो बेगम मैं 5 वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ तो जॉब कौन करेगा, मुझे तो निकाल देंगे। अच्छा दुकान कैसे चलेगी, अब हर थोड़ी देर बाद मैं टैक्सी रोक कर मस्जिद चला जाऊँगा तो बेगम बताओ फिर कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। अल्लाह ऐसे सारे भाइयों को एक पैगाम देते हैं, क्या अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा। और वो ख़वातीन जो ये सोचती हैं कि अगर हम दीन पे अमल करेंगे तो हमारे शौहर नाराज़ हो जाएंगे, हमें छोड़ देंगे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये आप अपना कह लीजिए फोड़पन होता है जो दीन के नाम पे लगता है। मैंने कभी नहीं देखा कि दीन को बैलेंस करके अच्छे तरीके से लेकर दोनों का हक देने वालों को कभी अल्लाह ने कोई बुरे हालात में डाला हो। अल्लाह ताला सबके घरों में सुकून डाल दे, इसलिए ऐसी बातों से कभी भी अपने दिल को पीछे ना कीजिए और अल्लाह पे नज़रें लगाइए। वाला इंसान तो मन खलक़ समावाती वाल अर्थ, अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है तो यकीनन वो ये जवाब देंगे कि अल्लाह ने। आप इनसे कहिए अच्छा ये तो बताओ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये इसके नुकसान को हटा सकते हैं, या अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे तो क्या ये इसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं। आप कह दीजिए क्या कुल हस्बी अल्लाहु अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, अल्लाह मुझे काफ़ी है, तवक्कुल करने वाले इसी पर तवक्कुल करते हैं। आप अंदाज़ नोट करें इस बारे का, थोड़ी सी देर के बाद हस्बी अल्लाह। सिद्दीकियत के मुकाम पे आए गई वो जो इधर उधर से कान बंद करके सीधा चलता जाए, और जब ये अकीदा बन जाता है कि इन अरादनी अल्लाह बिदुर्रिन हल हुन्न काशिफात दुर्री ही, बस यानी अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा अतैत वला मुती लिमा मनात वला यन्फ़ु ज़ल जद्दी मिन्कल जद, जब ये अकीदा बनता है ना तो फिर आप लोगों की परवाह नहीं करते। अल्लाह हमें इस दर्जे का ईमान अता फरमाए। कुल या कौमे मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, कह दीजिए कि मेरी कौम तुम अपनी जगह पर अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। अभी अभी तुम जान लोगे कि किस पर रुसवा करने वाला अजाब आता है और किस पर दायमी मार और हमेश की सज़ा होती है। इसमें भी आपको अकीदे की झलक दिखेगी, यानी बंदा मोमिन बड़ा ही बेनियाज होता है, भोला भी होता है, बेनियाज भी होता है, लोगों पर नहीं अल्लाह पे नजरें लगाता है। इन्ना अनज़लना अलैकल किताब लिन्नासि बिलहक, आप पर हमने हक के साथ ये किताब लोगों के लिए नाजिल फरमाई, बस जो शख्स राह रास्त पर आ जाए इसके अपने नफ़े के लिए है, और जो गुमराह हो जाए इसकी गुमराही का वबाल इसी पर है। वमा अन्ता अलैहिम बिवकील, आप इनके जिम्मेदार नहीं। नोट कीजिए, राह दिखा दी, बात बता दी, अच्छे बुरे का फ़र्क बता दिया, आप छोड़ दीजिए इनको इनके हाल पे, क्योंकि आप इनके सर पे खड़े नहीं किए जाएंगे। आप देख ही रहे हैं मक्की दौर पढ़ते हुए, और वो क्या है कि आप लोगों को बता तो रहे लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जिससे आप अल्लाह का काम अपने हाथ में लेने लगे। हाँ, दिन ब दिन इनके दिलों में अल्लाह की बड़ाई डाल दो। कैसे? अल्लाह की एक बड़ी सिफत जिसको आज मैं और आप हर रोज़ रात को भी देखते तो दिन को भी देखते, और वो क्या है? नींद और मौत। कैसे? अल्लाहु यतवफ्फल अन्फुस, अल्लाह ही रूहों को इनकी मौत के वक्त, और जिनकी मौत नहीं आई इन्हें इनकी नींद के वक्त कब्ज़ कर लेता है, फिर जिन पर मौत का हुक्म लग चुका है इन्हें तो रोक लेता है, और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए छोड़ देता है। गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन बहुत सी निशानियाँ हैं। एक दिन ऐसी नींद आएगी कि जिसमें से अब जब हम उठेंगे तो हम अपने बेडरूम में नहीं होंगे, हम अपनी कब्र में होंगे, और वो ऐसी नींद होगी कि जिसके बाद फिर हम इस दुनिया से निकलकर अगली दुनिया में जा चुके होंगे। इतनी बड़ी अल्लाह की कुदरत की निशानी को देखकर भी लोग गलत काम करते हुए सो जाते हैं, नहीं पता कि सुबह उठना भी है इधर के नहीं। अमित तखज़ु मिन दून अल्लाह शुफ़ा, क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को सिफारशी मुकर्रर कर रखा है? आप कह दीजिए कि गो वो कुछ भी इख्तियार न रखते हों और नाकल रखते हों, कह दीजिए कि तमाम सिफारिश का मुख्तार अल्लाह ही है। नोट कीजिए, सिराज मुनीरा मुख्तारे कुल नहीं थे, तमाम आसमान और ज़मीन का राज उसी के लिए है, तुम सब इसी की तरफ फेरे जाओगे। यानी नबी सल्लम के सामने जवाबदेह नहीं हो तुम अल्लाह के सामने हो, जिसके आगे कोई बंदा पर नहीं मार सकता। अब अल्लाह के नबी की दावत उनके दिलों को कैसे चुभती थी, इसका तस्करा ज़रा महसूस कीजिएगा आयत नंबर 45 में। व इज़ा ज़ुकिर अल्लाह वहदा, जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाए तो इन लोगों के दिल नफ़रत करने लगते हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते, और जब इसके सिवा औरों का जिक्र किया जाए, यानी मतलब उनके बुतों का, उनके बुज़ुर्गों का, उनके करनी वालों का, उनके मुश्किल कुशाओं का, यानी जो उन्होंने अपने ख्याल में, जो अपने ज़ोम में नाम बना रखे थे कि हाँ हाँ वो भी देते वो भी करते, तो फिर उनका हाल क्या होता है? इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो इनके दिल खिल कर खुश हो जाते हैं। मुशरिक की सोच दिखाई गई है कि अगर ये कहो ना सिर्फ अल्लाह से मांगो तो नाराज़ होते हैं, और जब साथ कहा जाए हाँ अल्लाह के साथ ज़रा इनसे उनसे भी मांग लो तो खुशियाँ मनाने लगते हैं। क्या कहो इनको? कुलिल्लाहुम्मा फातिर अस्समावाति वल अर्द आलिम अल गैबी वश्शहादा, आप कह दीजिए अल्लाह आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, छुपे खुले को जानने वाले, तू ही अपने बंदों में इन उमूर का फैसला फरमाएगा जिनमें वो उलझ रहे थे। वलौ अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू मा फ़िल अर्दि जमीया, अगर जुल्म करने वालों के पास वो सब कुछ हो जो रुए ज़मीन पर है और इसी के साथ इतना ही और भी हो, तो भी बदतरीन सज़ा के बदले में क़यामत के दिन ये सब कुछ दे दें, और इनके सामने अल्लाह ताला की तरफ से वो ज़ाहिर होगा जिसका गुमान भी इन्हें न था। जो कुछ उन्होंने किया था इसकी बुराइयां इन पर खुल पड़ी, और वो जिसका मजाक करते थे वो इन्हें आ घेरेगा, यानी मजाक करते थे क़यामत का, हशर नशर का, तो अल्लाह कहते हैं उस दिन इनको समझ आ जाएगी कि हमने कितना नुकसान का सौदा किया। आइए देखते हैं आयत 32 से ऑनवर्ड, तदब्बुर और अमल। आयात पर अमल, हमेशा सच बोलें, ख्वाह इसका ताल्लुक हकीकत से हो या मजाक से, झूठ ना बोलिए। जैसे आप कहते हैं कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, इसी तरह अल्लाह ताला से दीन पर साबित कदमी की दुआ मांगते रहिए। कोई ऐसा अमल जिसकी सेहत के बारे में आपको शक व शुबा हो, इस पर अमल करने से पहले किसी साहिबे इल्म से पूछ लीजिए और ख़ुद भी इल्म लीजिए। कुरान से रहनुमाई, तकवा अपनाने में सच्चाई की बहुत अहमियत है, लिहाजा हर मामले में सच्चाई इख्तियार करें। देखिए, सच्चाई सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं होती कि सच बोला, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी सच्चाई, लोगों को दिलाई हुई उम्मीदों पे भी सच्चाई, वादे भी सच्चाई पे हों, यानी जो सिद्दीकियत के मुकाम पे लोग होते हैं ना, वो लोगों को भी धोखा नहीं देते और अल्लाह को भी नहीं। शिफात अल्लाह ही के हाथ में है, लिहाजा उसी से तलब की जाए। अपने तमाम आमाल इखलास नीयत और सुन्नत के मुताबिक कीजिए। गौर व फिक्र के गोशे, तकवा की तमाम सिफात का ताल्लुक दीन हक की तरफ रहनुमाई और इसकी तस्दीक करने से है। ईज़ा रसानी की सूरत में मोमिन को ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी है। दिल में सोचिए, कभी किसी ने आपको तकलीफ़ दी? ख़ानदानी मामलात, कोई दुनिया का और कोई इर्द गिर्द का मामला, और आप हक पे थे और वो बातिल पे था, या वो आपको गलत समझ रहा था और आप गलत नहीं थे, तो इसको सोच कर कहिए हस्बी अल्लाहु, बस इतना ही काफ़ी है। फिर नींद में रूह को रोक लेना, फिर जिसकी चाहे वापस लौटा देना, दोबारा उठाए जाने की दलील है। अल्लाह ने इस दलील से मक्का वालों को बता दिया कि ये नबी जो कहता है कि मरने के बाद जियोगे, तो ये बिल्कुल सच है। हर रोज़ तुम इस अमल को होता देखते हो। फिर शिफात सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई किसी की सिफारिश कर नहीं सकता, और अगर कोई कर भी दे तो कबूल करना ना करना अल्लाह की मर्ज़ी है। आगे देखते हैं आयत 49 से। फ़ैज़ा मस्सल इंसान दुर्रुंदा सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु नेमा। इंसान को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम इसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता फरमा दें तो कहने लगता है कि इसे तो मैं महज अपने इल्म की वजह से दिया गया हूँ, हालांकि बात ये नहीं बल्कि यह फितना, बल्कि यह आजमाइश है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग बेइल्म हैं। हाईलाइट कीजिए, कभी अपने इल्म पे गरा ना कीजिए, कभी अपने रिसोर्सेज पे गरा ना कीजिए, कभी अपनी याददाश्त पे, मेमोरी पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपने बच्चों की इंटेलिजेंस पे गरा ना कीजिए। नहीं, हम ख़ानदानी तौर पे बड़े ज़हीन हैं, मुझे भी याद हो जाता था, मेरे बच्चे को भी होता है। ना ना, जो भी आपसे खैर निकले आप उसको अल्लाह के नाम लगा दीजिए। यही बात है, ख़ुद को बड़ा कहना बेइल्मी की अलामत है। क़द क़ाला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे अगले भी यही बात कह चुके, बस इनकी कार्रवाई इनके कुछ काम ना आई, फिर इनकी की हुई तमाम बुराइयां इन पर आन पड़ी, और इनमें से जो भी गुनाहगार हैं इनकी की हुई बुराइयां भी अब इन पर पड़ेंगी। ये हमें हरा देने वाले नहीं। अवलम यालम अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, क्या इन्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और तंग भी? ईमान लाने वालों के लिए इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। क्या खूबसूरत बात है, और कीजिए इस पे। अब आगे वो आयत जो उम्मीद अफसा आयत है, जो बहुत सारे लोगों को दीन के करीब लाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हम कहते हैं कि नेक, आलिम, फाजिल, मुत्तकी लोग, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। इस आयत को सुनकर तो देखिए क्या महसूस हो रहा है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी जानिब से कह दो। देखिए, नबी से कहलवाया जा रहा है, इज्जत भी दी जा रही है और अहमियत को भी बढ़ाया जा रहा है। क्या कह दो? ए मेरे बंदो। देखिए, कुल के बगैर भी तो आयत आ सकती थी ना, या इबादी अल्लज़ीना असरफू, लेकिन नबी को बीच में डालना, इससे तो इस आयत का हुस्न कई गुना बढ़ गया। क्या कह दो? कौन से बंदे? मेरे बंदो। किनको कहा जा रहा है? मेरे बंदो, अल्लज़ीना नमाज़ें पढ़ी, अल्लज़ीना रोज़े रखने वाले, अल्लज़ीना सदका करने वाले। ना ना, असरफू अला अन्फुसिहिम, मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। बिल यकीन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे, ढके छुपे, जाहरी बातनी, इकराह वाले, अपनी मर्जी के, हम जानते हैं, हम जिनको नहीं जानते, रमज़ान के गुनाह, गैर रमज़ान के गुनाह, रातों के गुनाह, दिनों के गुनाह सारे माफ़ कर दें, और हमें मुकाम सिद्दीकियत पे पहुँचा दे। वाकई वो बड़ी बख्शिश, बड़ी रहमत वाला है। सच्ची बात है, लोगों ने हमें रब से भी बदगुमान कर दिया। कुरान पढ़ने से पहले तो हम यही सोचते थे अल्लाह मारता है, अल्लाह गुस्सा करता है, अल्लाह आग में डालेगा। कुरान पढ़कर ये सारी गलत फहमियाँ दूर हो गईं। हाँ, करने के काम क्या हैं? وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. ذرا سے اس آیت کو بڑا کر کے دیکھیے, کیا محبتوں میں ڈوبا ہوا جملہ نہیں ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ایک تو یہاں پڑھیے درود, اللہم صلی علی محمد. مجھے تو اللہ کے ساتھ نبی پہ پیار آ رہا ہے اس آیت کو پڑھ کے, کہ جنہوں نے ہمیں ایسے پیارے رب کا تعارف کرایا. اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے ہم کیسے اپنے پیارے رب کے بارے میں جانتے؟ اپنے پچھلے گناہوں پہ معافی مانگیے, آئندہ کے لیے سٹیپس ہیں. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے, اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ, ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی, بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی نیک لوگوں میں ہوتا, یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیک لوگوں میں ہو جاتا. ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور اور تکبر کیا تھا, اور تو تھا ہی کافروں میں سے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا, اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہے؟ یعنی اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا. اللہ ہمیں پرہیزگاروں میں شامل کر دے. لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون, انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے. اللہ ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کر دے. اللہ خالق و کلی شعیم و هو علی کلی شعیم وکیل, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے. جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں. قل افغیر اللہ تامرونی اعبدوا ایھا الجاہلون, آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ ہائی لائٹ کریں, اللہ کے ماں سوا کی عبادت کرنا جہالت ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ, اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہی تھی نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں. ذرا سے اس کو محسوس کیجئے گا, اللہ کی بڑائی, اللہ کی ذات, اللہ کی قدرت, ساری زمین آسمان اس کی مٹھیوں میں, اتنی بڑی ہستی کی واقعی ہم نے قدر نہیں کی. تو بولیے اللہ ہمیں اپنی قدر کرنے والوں میں شامل کر لے. اور صدیقیت کے درجے پہ فائز لوگ ہی اللہ کا حق پہچانتے ہیں, باقی لوگ تو بس ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں. تدبر اور عمل کے نقطے دیکھتے ہیں آیت 49 سے آنورڈ. آیات پر عمل, چونکہ اس میں گناہوں پہ معافی کی بات ہوئی تو ایک دعا جو اللہ کے نبی نے سکھائی اور آپ میں سے جن کو نہیں معلوم تو نوٹ کیجئے, یہ دعا سجدے میں مانگی جاتی ہے. اللہ کے نبی سے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں पांच से छह मुख्तलिफ दुआएं हैं, उनमें से एक दुआ अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू वजिल्लहू वअव्वलहू वआखिरहू वअलानियतहू वसिर्रहू बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों की फ़िक्र लगा दे, दुनियावी नेमतों को रब से कुर्बत का ज़रिया बनाने की दुआ, और नेमतों के फितनों से अल्लाह की पनाह मांगे, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें और इसकी नेमतों पर इसका शुक्र अदा करें। देखिए, एक तरफ़ गुनाहों पे माफ़ी, एक तरफ़ नेमतों का हक, एक तरफ़ अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाना, ये सब कुछ एक इंसान को अल्लाह ताला के करीब करता है। और अल्लाह ताला मुझे आपको वाकई इसकी तौफीक अता फरमाए, कुरान से रहनुमाई, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के तमाम फ़ैसलों से राज़ी रहिए। रदीतु बिल्लाहि रब्बन, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहिए। तकवा को लाजिम पकड़े क्योंकि ये राह निजात है। शिर्क के असबाब में से एक सबब जहालत है, लिहाजा तालीम पर ख़ास तवज्जो दीजिए। गौर व फिक्र के गोशे, कुरान का असलूब तरगीब और तरहीब के हसीन इम्तिजाज से दिलों का मदावा करता है, यानी कभी रग़बत दिलाइए, कभी खौफ दिलाइए। कभी कुरान पढ़ के आपको मुस्कुराहट आई, मुस्कुराया करें, और कभी रोना आया, रोया करें। परहेजगार लोग खुद पसंद नहीं होते क्योंकि तकवा खुद पसंदी के मनाफी है। दीनी और उखरवी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र और इसकी तारीफ बयान कीजिए, दीनी नेमतें ही अफसल हैं, दुनिया तो साथ मिल ही जाएगी। क्या खूबसूरत पैगाम है, आप देख रहे हैं कितनी दिलों को नरम करने वाली आयात हैं इस सूरत की। आगे देखते हैं अब वो खूबसूरत आयात जो वाकई यूनिक हैं, बाद में ज़रूर इनको आप अगर सुनना चाहें तो काहतानी हैं, खालिद काहतानी, उनकी आवाज़ में सुनिए, उन्होंने इन आयात को बहुत ही खूबसूरती से पढ़ा है। आयत 68, वनुफिखा फिस्सूरि फसाइक मन फिस्समावाति व मन फिल अर्थ, और सूर फूंक दिया जाएगा, पस आसमानों और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, पस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। व अशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, इसको महसूस कीजिए, विजुलाइज करें, और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी। नामे अमाल हाजिर किए जाएंगे, नबियों और गवाहों को लाया जाएगा, और लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले कर दिए जाएंगे, और इन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। क़यामत के दिन के मनाजिर, क्या कुछ होने वाला है, और हमें उसकी फ़िक्र कम और दुनिया के छोटे छोटे मामलों की फ़िक्र है। आज इफ्तारी में क्या बनाएंगे, आज क्या खाएंगे, कहीं हम ये ख्यानते तो नहीं कर रहे क्लास के दौरान, हर एक अपने आप से पूछे। वफ़ियत कुल्लु नफ्से मा अमिलत बहुवा अलमु बिमा यफ़अलून, और जिस शख्स ने जो कुछ किया उसको भरपूर दिया जाएगा, और जो कुछ लोग कर रहे हैं वो बखूबी जानने वाला है। वसीकल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिरों के गौल के गौल जहन्नम की तरफ हंकाए जाएंगे। जब वो इसके पास पहुंच जाएंगे तो इसके दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाएंगे, और वहाँ के निगेबान इनसे सवाल करेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते थे? ये जवाब देंगे, हाँ दुरुस्त है, वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाबी अलल काफिरीन, लेकिन अज़ाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया। कील अदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फबीस मस्वल मुतकब्बिरीन, कहा जाएगा कि अब जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, जहाँ हमेशा रहोगे, पर सरकशों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। क्या पाया, ज़रा सोचिए, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रातें, सारी ज़िंदगी नफ्स को पूछते रहे, माशरे को पूछते गए, बुतों को और मूर्तियों को पूछते गए, और वहाँ जहन्नम के अंधेरों में डाल दिए गए। क्या बनेगा ऐसे लोगों के साथ, कभी आपने मैंने सोचा, क्या दर्द इनका है दिल में? आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो भी इस वक्त कुफर और शिर्क में है उनको हिदायत दे दे, और हमें बहुत सारों की हिदायत का जरिया बना दे। आप देखिए कि दावा का काम जहाँ भी होता है ना, दिल ठंडा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ से दौरे कुरान हो रहा है तो वहाँ जो न्यू मुस्लिम है उनके साथ इफ्तारी है, और मैं इतनी एक्साइटेड उनके साथ मिलने को कि मैं आपको बता नहीं सकती कितने चमकते चेहरे होते हैं उनके, कि जिनको अल्लाह ताला इस्लाम को समझ कर मानने वाला बनाता है। और कितने खुशबख्त हैं वो लोग जो इसके लिए कोशिशें करते हैं। अल्लाह ताला दावा की हर कोशिश को कामयाब करे और इन जगहों को आबाद रखे जहाँ से कुरान का ये नूर फैलता है और लोगों के दिल अंधेरों से रोशनियों में आते हैं। अब तस्वीर का दूसरा रुख सुनिए। पारे का टॉपिक, सिद्दीकियत का मुकाम चाहिए आपको तो इस्तकामत के साथ चलते जाइए, अल्लाह ताला आपको एक दिन जन्नत की शाहराह पे फाइज कर देगा। बिल्कुल अपने आप को जन्नत की रोड पे, सबीलुल जन्ना पे चलता हुआ महसूस कीजिए। वसीकल्लज़ीन तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और जो लोग अपने रब से डरते थे इनके गिरोह के गिरोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे। ए अल्लाह इस गिरोह में हमें भी डाल देना, कहीं छुप छुपा के बच बचा के चले ही जाए। मक्का जाते ना बड़े धक्के पड़ते हैं, कई दफ़ा ना चाहते हुए आपको पता भी नहीं होता, आप खड़े हैं पीछे से एक धक्का पड़ता है, आप आगे कहीं घुस जाते हैं। अल्लाह इसी तरह जन्नत में डाल देना। हमारे अमल तो नहीं है, हमारी औकात भी नहीं है, लेकिन अल्लाह कोई नेकी कबूल कर ले, किसी की दुआ लग जाए हमें, या अल्लाह किसी को कोई अच्छा कह दिया, बोल दिया, किसी की कोई मदद कर दी, किसी की कोई दुआ ले ली, अल्लाह वही नेकी हमें जन्नतियों के इस गिरोह में शामिल करवा दे। क्या होगा? हत्ता इसा जा उहा वफुतिहत अबवाबुहा, यहाँ तक कि जब इसके पास आ जाएंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहाँ के निगेबान इनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम पर सलाम हो, तुम पाकीज़ा हो, तुम इसमें हमेशा के लिए चले जाओ। फील कीजिए अपने पर इस जुमले को ले, कभी ये दरवाज़ा फिर तुम्हें बाहर नहीं आने देगा। लिख लीजिए, जन्नत का दरवाज़ा वन वे है। आपने कई जगहों पे ऐसे डोर्स देखे होंगे जो सिर्फ खुलते हैं बंद नहीं होते, यानी वन वे होते हैं। एयरपोर्ट्स पे तो बहुत से होते हैं ना, लिखा भी होता है कि इस डोर से अगर आप चले गए तो वापस नहीं आएंगे। जन्नत का दरवाज़ा भी वन वे है, एक दफ़ा अल्लाह हमारा एक पाँव अंदर रखा दे, दूसरा अल्लाह खुद ही डलवा देगा। बाज़ लोग बड़ी आला आला बातें करते हैं, जन्नत का वो महल, मोती का वो दे दे, वो दे दे, तो मैं कहती हूँ अल्लाह बस एक दफ़ा दोनों कदम जन्नत में आ जाए, उसके बाद जहाँ मर्जी ले जा। देखिए मेहमान है ना, मेज़बान उसको जहाँ मर्जी बिठा दे, बस एक बात है कि वो उसको अपना मेहमान बना ले। और ज़रा जुमला तो सुनिए जो इंशाल्लाह आपकी ज़ुबानों पे भी होगा जन्नत में दाखिल होने के बाद। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू वरसनल अर्दा न तबव मिनल जन्नति हई सुनशा फ़ने माजरुल आमिलीन, ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया। अल्लाह अकबर, और हमें इस ज़मीन का वारिस बना दिया कि जन्नत में जहाँ चाहें मुकाम करें। बस अमल करने वालों का कैसा ही अच्छा बदला है, ये लिख लें बस, अजरुल आमिलीन। आलिमीन नहीं है वो, आलिम जाएंगे जो आमिल भी होंगे। और अमल कौन सा? कुरान और सुन्नत का अमल, फेल नहीं अमल। वामिलुस सालेहात, अपनी मर्ज़ी के अमल नहीं करने, अपनी पसंद की बातें नहीं करनी। देखिए यहाँ छोटी सी बात जो पिछले पारे में बार बार हुई उसका ताल्लुक जोड़ दूँ। हमने देखा था अल्लाह ताला ने फरमाया उसमें इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सूरह स्वाद के साथ इसको जोड़िएगा। वहाँ लफ्ज़ मुखलस आया था ना, हमने उसकी एक इंटरप्रिटेशन दे ली थी कि अभी अमल कर रहे हैं इखलास पे, कोशिशें हो रही हैं तो मुखलस, डूइंग फाइल हैं आप, कर लिया तो मुखलस हो गए, मफूल बन गए। एक टर्म यहाँ लीजिए, देखिए मुखलस होना सिर्फ क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। क्यों? मुखलस इखलास के साथ काम करता है, बट उसको ये नहीं पता कि मुझे करना कैसे, क्या करना है, सुन्नत क्या है। तो मुखलिस से मुखलस बनने के लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैं इसकी मिसाल आपको इस पारे के साथ दे देती हूँ। आप कभी कब्रों पे जाकर लोगों को पूजा पाठ करता देखें? कभी मज़ारों पे जाकर बुज़ुर्गों के आगे सजदे करता देखें? कभी किसी मंदिर में जाकर बुत से मांगता देखिए? किसी सेनिगॉग या किसी चर्च में जाकर जीसस से या फिर अपने अपने मज़हब के मुताबिक मांगता देखे? बड़े ही मुखलिस होते हैं वो, रोते लेकिन वो मुखलिस नहीं है। क्यों? क्योंकि सुन्नत तरीका नहीं है। तो अल्लाह ताला आमिलीन बना दे, सिद्दीकियत का मुकाम उसको मिलेगा जिसकी नीयत भी ठीक हो और जिसका तरीका भी ठीक हो। और अल्लाह मुझे आपको बना दे ऐसा ही। और देखिए क्या खूबसूरत आयत के ऊपर हमारा पहला रुख पूरा हुआ, आयत 74 सूरत ज़ुमर। बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाही अला नेमतिल कुरआन। बात आगे बढ़ती है। व तरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्श, और तू फरिश्तों को अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द हल्का बांधे हुए अपने रब की हमदो तस्बीह करते हुए देखेगा। यह आयत का नंबर नोट कीजिए। गालिबन पहली दफ़ा यहाँ फरिश्तों का जिक्र आया, और आगे कितनी दफ़ा आएगा इस बारे में। यही तो है अर्शियों और फरशियों का ताल्लुक। फिर क्या होगा वहाँ? युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम वकुदिया बैनहुम बिलहक़, और इनमें इंसाफ का फैसला किया जाएगा और कह दिया जाएगा क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी खूबी अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। चलिए सूरत फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरत अलनाम में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फिर कहाँ आया सोचिए, और आज यहाँ फिर आ गया। यानी पूरी फ्रेज़ कुरान पाक में चार मुकाम पे है। आइए ज़रा गौर करते हैं आयत 68 से। अमल के नुक्ते, नमाज में बेहतरीन अंदाज से क़याम कीजिए ताकि आखिरत में अल्लाह के सामने खड़ा होना आसान हो जाए। फिर ये दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा अक्सिना आक़िबतना फ़िल उमूरी कुल्लिहा वाजिरना मिन हिस्र दुनिया वाज़ाबिल आखिरा। अल्लाह मेरे सारे कामों का अंजाम बेहतरीन कर दे, और मुझे दुनिया की रसवाई से बचा और आखरत के अजाब से। ये दुआएं मांग लिया करें, फिर अल्लाह की पनाह में रहेंगे आप। नफली इबादात को बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि इनके ज़रिए आप अल्लाह का कुर्ब पाएँ और जन्नत के दरवाज़ों में दाखिल हो सकें। कुरान पाक से रहनुमाई, इंसान को रोज़े क़यामत इसके अमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा। भलाई की हर दावत पर लब्बैक कहें, इससे एराज ना करें। ज़ाहिर व बातिन दोनों में पाकीज़गी इख्तियार करें। पाकीज़ा खाएं, पाकीज़ा पहनें, पाकीज़ा बोलें, पाकीज़ा लिखें और पाकीज़ा सुनें। इंशाल्लाह सिद्दीकियत का मुकाम मिलेगा। हर चीज़ मिलती जाती है तो आखिर में इंसान फिर अल्लाह ताला के सेट किए हुए उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतर जाता है जो कि उसने अपने बड़े ख़ास बंदों के लिए मुकर्रर किया है। गौर व फ़िक्र के गोशे, कुरान और इसमें मौजूद नसीहतों से इबरत लेनी है। अहले जन्नत के गिरोह इनके दर्जात और तकवा के मरातिब के एतबार से होंगे। यानी वही बात है, जितना गुड़ उतना मीठा। इस दुनिया में जो कर लेंगे, मेहनत करेंगे, जो मुशक्क़त करेंगे, और ये ज़रूरी नहीं कि सब एक ही तरह के कोशिश करें। आप देखिए लोगों के मिजाज फ़र्क होते हैं। किसी को नमाज़ पढ़ना अच्छी लगती है, आसान लगता है, वो नफिल ज़्यादा पढ़ लेता है। किसी को रोज़ा रखना आसान लगता है, वो ज़्यादा नफली रोज़े रखता है। किसी को सदका खैरात करना अच्छा लगता है, वो करेगा। तो ये जो जन्नत के दरवाज़ों की बातें हो रही है ना, वो एक नहीं है, आठ दरवाजे हैं जन्नत के। बस ये कहा करें कि अल्लाह मुझे फ़राइज़ में पक्का रख, मेरा अकीदा दुरुस्त हो, और उसके बाद जो मेरी बेहतरीन खूबी है उसमें मुझे खपा दे। बस हर एक मुख्तलिफ दरवाजे से भी गया तो इंशाल्लाह अंदर मौजूद होगा। आप में से कोई बाबू सदका में से जा रहा होगा तो कोई बाबू रैयान में से। बस कोई मीटिंग पॉइंट बना लेते हैं, वहाँ पर मिलेंगे। जैसे हरम के बाहर आकर मिलने का पॉइंट बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से नसीहतों पर अमल करने की तौफीक दे। रोज़े क़यामत पूरी मखलूक की ज़ुबान पर अल्लाह की हमदो सना होगी। अब यहाँ भी कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन।